जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे।
ओम शांति। तो हम सबने स्वयं का परिचय भी प्राप्त किया, तो पिता परमात्मा का भी परिचय प्राप्त किया। अब जरूरत है हमको अपने आप को शक्तिशाली बनाने की। तो कैसे हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं या कैसे हम स्वयं का सशक्तिकरण करें, इसको हम देखते हैं। परमात्मा के परिचय में आपने अभी देखा होगा परमात्मा के परिचय की 5 बातें, है ना? उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, एड्रेस कहाँ के रहने वाले, उनके गुण और उनका कर्तव्य, ये 5 बातें आपने जानी होगी ना अभी। तो क्या है परमात्मा का कर्तव्य? क्या है परमात्मा का कर्तव्य? क्या सुना आपने? देखो, हर धर्म शास्त्र के अंदर ये बात आती है कि धरती पर एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा को उतरकर आना पड़ता है। और वो टाइम कौन सा बताया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पूरा एक लंबा श्लोक कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब वो पिता परमात्मा इस धरती पर आता है। और आकर क्या करता है? अगर आया ही ऐसे टाइम पर है, मना ऐसा ही कुछ काम है उसका, तो क्या काम है उसका, क्या कर्तव्य है? अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना करना। हर शास्त्र ये बात कहता है ना, फिर वो भाषा भले अलग अलग हो लेकिन सबका सार तो यही है कि परमात्मा धरा पे आते हैं अधर्म के समय और आकर के अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। अब ये जो इनका कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना, अधर्म का विनाश करना, इसको समझने के लिए भी ये बहुत जरूरी है मैं पहले ये समझूं कि धर्म आखिर कहते किसे हैं, अधर्म कहते किसे हैं, तब मेरे लिए बहुत सहज हो जाएगा। हम कहते हैं ना, आज के समय को चारों ओर जब नजर फेरते हैं तो हम क्या कहते हैं? चारों ओर क्या है? चारों ओर अधर्म है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई, ऐसे बोलते हैं हम सभी, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन जरा ये भी बता दो, ऐसा क्या दिखाई दिया मुझे जो मैं कह देता हूं हाँ अधर्म आ गया है? ऐसा क्या दिखाई देता है कि जिसको देखकर मैं कहता हूं धर्म नाम की चीज नहीं रह गई है? क्या है? तभी तो हम समझ पाएंगे ना धर्म किसको बोल रहे हैं, अधर्म किसको बोल रहे हैं। देखो, धर्म का बहुत सीधा सरल अर्थ है धारण करना। शहरों में पानी की टंकियां होती है पानी सप्लाई करने के लिए, कि जिस पानी को घर घर में प्राप्त करके पानी से काम जो होते हैं वो निपटाने होते हैं। तो वो जो टंकी पानी के लिए बनाई गई है, तो समझो वो 1,00,000 लीटर अपने में धारण करके रख सकती है। तो बाहर क्या लिखा होता है हिंदी में, 1,00,000 लीटर धारिता क्षमता। अर्थात ये जो टंकी है अपने आप में 1,00,000 लीटर पानी को धारण करने की क्षमता रखती है। तो टंकी के लिए पानी क्या हो गया, धर्म। पानी को धारण किया है ना, तो टंकी के लिए पानी क्या हो गया, धर्म। और वो टंकी पानी के लिए ही बनाई गई थी कि जिसको हम यूज करें पीने के लिए, कुकिंग के लिए और भी सारे काम के लिए। तो जब पानी बहुत साफ स्वच्छ आता रहता है, हम उसको बराबर यूज करते हैं और जीवन अच्छा चलता रहता है। लेकिन समय के चलते चलते उस टंकी में गंद कचरा आदि धीरे धीरे आने लगता है, और वो धीरे धीरे करते करते उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और वो पानी अशुद्ध हो जाता है। और ऐसा अशुद्ध पानी जब हम पीते हैं या भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। शुरू में तो समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। जैसे ही पानी पी रही हूँ कुछ कुछ हो रहा है, जैसे ही भोजन खा रही हूँ कुछ कुछ हो रहा है, फिर भी हम चलाते रहते। अति हो जाती डॉक्टर के पास जाते, और डॉक्टर तो ऐसे ही दवाई नहीं देता ना, हिस्ट्री पूछता है ना। और वो सब पूछने के बाद उसको पता चल जाता है ये जो आपको गड़बड़ हो रही है, तकलीफ हो रही है, बीमारी हो रही है, इसका कारण है तुम जो पानी पी रहे हो, जो रसोई में यूज कर रहे हो वो साफ सुथरा नहीं है। ये पानी के कुछ कीटाणु इसमें आपके भोजन में चले जाते पीने में, जिस कारण से ये तकलीफ हो रही है। तो आप वो पानी यूज करना बंद कर दो। पर कैसे करें, प्यास लगेंगी तो पानी तो पीना है ना, भोजन पकाने के लिए पानी तो चाहिए ना, कैसे पकेगा नहीं तो भोजन। ये हमारा गीत बज रहा है तो ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, जहां मन को अपने आप में एकाग्र करते शिव पिता से जोड़ते हैं। ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे पानी गंदा भले हो गया है लेकिन उसके बिना काम भी कैसे चलेगा, पीने के लिए तो चाहिए ना, भोजन बनाने के लिए तो चाहिए ना, और कोई और साधन ही नहीं है मेरे पास। तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा, पानी को प्यूरिफाई कर लो, शुद्ध कर लो, फिल्टर कर लो, ताकि वो कचरा आपके पास न आए और पीने से वो अंदर न जाए। तो फिर क्या हो जाएंगे, आप सेफ हो जाएंगे। तो ये जो कचरा, ये जो गंध जो पानी में आ गया टंकी के अंदर, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये उस टंकी के लिए क्या हो जाएगा, अधर्म। पानी क्या था टंकी के लिए, धर्म, क्योंकि टंकी बनाई किस लिए थी, पानी को धारण करने के लिए। लेकिन चलते चलते उसमें पानी के साथ साथ क्या आ गया, कचरा भी आ गया, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब वो पिया माना अंदर धारण हुआ ना, तो धारण नहीं करना चाहिए था, फिर भी धारण हो रहा है उसमें, तो वो अधर्म हुआ ना, अधर्म हुआ ना। तो ये तो थी पानी के टंकी की बात, भौतिक बात है। क्यों, धर्म और अधर्म को समझने के लिए। अब ऐसे ही जब हम कहते कि भगवान इस धरती पर आता है धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, इसका मतलब क्या। तो जब हमने कहा कि हाँ संसार में चारों तरफ अधर्म दिख रहा है, धर्म की ग्लानि दिख रही है, तो संसार का कोई एक कोना है क्या जहाँ दिख रहा है कि अधर्म है, जहाँ दिख रहा है धर्म ग्लानि है। संसार किससे बना, हम मनुष्यों से ही तो बना है ना। इस संसार की इकाई तो हम मनुष्य ही है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि संसार में अधर्म बढ़ा, संसार में धर्म की ग्लानि हुई, इसका मतलब किस में अधर्म बढ़ा, किस में धर्म की ग्लानि हुई, मनुष्य में। और मनुष्य में मतलब मनुष्य की सोच में। आज हमने देखा ना कि जब हम यात्रा पे पहली बार निकले, क्या धारण करके निकले थे, कौन से संस्कार थे, बोलो बोलो कौन से संस्कार थे, कौन से संस्कार थे, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, जिसको कहा कि आत्मा सतोगुणी बनकर आई थी, सात गुणों को धारण करके आई थी, ये है आत्मा का धर्म। उसने क्या धारण किया हुआ है, सात गुण। तो जब वो सात गुण थे हमारे जीवन में, फर्स्ट टाइम हम इस धरती पर अपनी जीवन यात्रा हमने आरंभ की, हमारे पास सिर्फ गुण ही गुण थे, अवगुणों का नाम निशान नहीं था, विकार हमारे अंदर नहीं थे। आज जो हमको दिख रहे हैं, टेंशन, भय, चिंता, गुस्सा, उदासी, हाँ, ये सब हमारे पास ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, गुण थे, ये हमारी धारणा थी। इसीलिए तो कहते हैं आत्मा का स्वधर्म है शांति। माना स्वयं में वो क्या धारण करके उतरी थी, ये तो आत्मा उस समय साफ सुथरी थी। और जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो, विकार हो ही नहीं, वो कौन थे। आपको पता है जब हम भक्ति करते हैं तो हम किसकी महिमा में गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, निर्विकारी, किसकी महिमा में गाते हैं। जब देवी देवताओं की महिमा करते हैं तो क्या गाते हैं, यही कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात आत्मा ने जब इस धरती पर जीवन की यात्रा आरंभ की थी तब वो क्या कहलाती थी? हाँ, सिर्फ गुण ही गुण थे, विकार नहीं थे, तो देवी देवता थे, है ना? तो वो देवी देवता कौन थे? हम ही तो उतरे थे ना साफ सुथरे, हम ही तो उतरे थे ना साफ सुथरे बिना विकार के, तो हम ही थे वो। कौन थे हम बोलो, कौन थे हम? देवी देवता हम थे। और यही कारण है कि हमको वो देवी देवता बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं अच्छे लगते है? नहीं लगते हैं, जाने अनजाने हम उनको नमन कर देते हैं, होता है नहीं होता है? यहां तक कि नमन तो छोड़ो, आज आपके परमात्मा के परिचय में आपने सुना होगा कि हमने इनको ही भगवान समझ लिया था, है ना? जबकि 33 करोड़ देवता है और हम कहते हैं भगवान एक है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल साफ सुथरे थे, अवगुण नाम की चीज नहीं थी, सिर्फ गुण ही गुण थे, और इसलिए लगने लगा ये भी क्या है? भगवान है। परंतु वास्तव में जैसे कहा, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात परमात्मा ने आत्माओं को कैसे बनाया? अपने जैसा। हम आत्माएं तो हमने देखा उतरे थे गुणों के साथ, लेकिन इस जर्नी में, इस यात्रा में चलते चलते जो नहीं धारण करना चाहिए था, जैसे टंकी में आ गया था, वैसे इस आत्मा में भी आ गया था, क्योंकि हमने क्या किया? एक के बाद दूसरा जन्म लेते गए। लेकिन परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, और इसलिए परमात्मा की महिमा क्या है? वो सत चित आनंद है। आत्माओं के लिए कहते हैं आत्मा में तीन गुण है, सत रज तम, ऐसे बोलते हैं ना आत्मा के लिए। परमात्मा के लिए बोलते हैं सत रज तम, उसके लिए बोलते हैं वो त्रिगुणातीत है। ये जो तीन गुण आत्माओं में है उनसे वो दूर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सत्य है। तो उसके चित्त में हमेशा सत्य होने के कारण हमेशा ही वो आनंद है, जिस कारण से कहा सत चित आनंद। लेकिन हम उसके जैसे ही उतरे थे, क्योंकि एक बाप अपने बच्चे को क्या देगा? जो उसके पास है वो ही देता है ना। तो उसके जैसे गुणों के साथ उतरे थे, परंतु चूंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते, एक के बाद एक दूसरा जन्म लेते जाते, तो फिर दूसरे दूसरे संस्कार बनते जाते, और वो मेरा सत जो है अंदर दबता जाता, और वो दबते दबते इतना दब जाता हम फाइनली भूल जाते हैं कि हम खुद ही शांत स्वरूप हैं, और फिर हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब वो परमात्मा आकर बताता है, बच्चे तुम्हारे अंदर है, तुम खुद ही खुशी के स्वरूप हो, तुम खुद ही शांत स्वरूप हो, तुम खुद ही शक्तिशाली हो। लेकिन संग फिर आत्माओं का मिलता गया ना, संग शरीर का मिलता गया ना। शरीर माना क्या? कहा ना माटी का पुतला, क्योंकि शरीर पांच तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व पृथ्वी माना मिट्टी, तो मिट्टी को रज भी कहते हैं ना। तो इस रज के संपर्क में आते आते, इस रज की स्मृति पक्की होते होते, वो फिर अधर्म जो कहा ना कचरा, हाँ, वो चिंता, वो डर, वो भय, वो टेंशन, वो गुस्सा, वो हमारे में आने लगा। लेकिन जब शुरू में भी आया ना, आज जितना है जिसको हम कह रहे धर्म की ग्लानी, अधर्म अति, उतना नहीं था। टंकी में भी कचरा एकदम से बहुत सारा थोड़ी आता है, धीरे धीरे शुरुआत होती है ना। यहाँ तक कि जब देखो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98 point something, लेकिन जब बुखार आता है सीधा 105 पे जाता है क्या? नहीं, थोड़ा 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 बढ़ता है। तो हमारा थोड़ी थोड़ी रज, माना एक एक जन्म लेते गए, इस मिट्टी के संग में आते रहे, वो रज चढ़ती गई, मेरा सत्व गुण दबता गया, और इस रज के संपर्क में आकर वो धीरे धीरे गुस्सा, अंतर जो समानता थी कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, चाहे रोल किसका कुछ भी हो, पर रोल प्ले करने वाली तो हर एक क्या है? आत्मा है। हर एक उस सात गुणों के साथ उतरी है। वो हम धीरे धीरे क्या करने लग गए? भूलने लग गए, और रोल कोई समझ लिया, ये मैं हूँ और ये फलाना है। यही हुआ ना हमारे से गलती। तो अब जैसे कहा कि पानी तो पीना है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना, बहन जी इसी संसार में तो जीना है ना, इसी संसार के लोगों के साथ तो उठना बैठना है ना। तो संसार में अगर अधर्म है और मैं अकेला धर्म पालन करूं, माना इन गुणों को ही सिर्फ धारण करूं, तो काम कैसे बनेगा? ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ना हम सभी। परंतु नहीं, संग का रंग, तब कहा कि आज दिन तक इसका संग रहा, आज दिन तक आत्माओं के संग में रहे, अब जरूरत है उस परमात्मा का संग करने की। क्योंकि जैसा होगा संग, वैसा लगेगा रंग, ये निश्चित है। और दूसरा, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते संग किए बिना रह नहीं सकता। तो अगर उसको अच्छा संग नहीं मिलेगा तो कोई भी संग में लग जाएगा ना वो। तो संग चाहिए आत्मा को। तो लेकिन अब चूंकि इस आत्मा को इतनी सारी उसके अंदर जो नहीं धारण करना था वो भी आ गया है, उससे अपना बचाव करना है, तो उस पिता परमात्मा से जो सिर्फ सत्य और सत्य है, जिसके चित्त में, जिस कारण से सदा ही आनंद है उसमें, उसके साथ संग करना पड़ेगा। जब कोई रेडियो स्टेशन सुननी होती है ना मुझे, बहुत अच्छे सुमधुर संगीत सुनने हो, तो ट्यूनिंग उसी स्टेशन के साथ करनी पड़ेगी ना, ट्यूनिंग उसी स्टेशन के साथ करनी पड़ेगी ना। और जब उसके साथ ट्यूनिंग हो जाएगी तो वो क्या होगा? वो सुमधुर संगीत मैं सुनूंगी, मेरा मन संगीत सुन के भी हम हल्के होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो जिसके साथ ट्यूनिंग होगी उसके संग का रंग, माना असर, मुझ पर पड़ेगा जरूर। और तब जाके जो मेरा सत्व गुण, जो सात गुण है मेरे अंदर ही, लेकिन मैंने काफी समय से यूज नहीं किया है, और इसलिए अब लगता है बहन जी सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आप बोलते हो प्यार से बात करो, हाँ आप कहते हो अपने आप को याद दिलाओ मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ। इतनी बड़ी परिस्थिति मेरे सामने आ गई है और आप कहते हो हिलो नहीं, शांत रखो अपने आप को, स्टेबल रहो, हलचल में नहीं आओ। बहन जी कैसे होगा ये? बोलते हैं ना वैसे, क्यों? क्योंकि काफी समय से उसको यूज नहीं किया है, तो जैसे कि वो एक्टिव नहीं है अभी, वो क्या हो गया है? इनएक्टिव हो गया है, सक्रिय नहीं रह गए हैं। सक्रिय कौन से संस्कार बन गए हैं? लंबे समय से किसको यूज कर रहे हैं? गुस्से को, चिंता को, डर को, डांट फटकारने को, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत लंबे समय से ये यूज कर रहे हैं ना, तो अब इसको यूज न करके वो यूज करना है, और वो यूज कर सकूं इसके लिए उसके संग में रहना है। तो जितना जितना उसके साथ संग करेंगे, माना ही उसके साथ कनेक्ट होंगे। तभी कहा ना, बैटरी को कनेक्ट होना है उस पावर हाउस पिता परमात्मा से, ताकि जैसे ही मैं कनेक्ट हो जाऊंगी तो वहां से सप्लाई मेरे अंदर आएगा ना। और कनेक्ट होने के लिए ट्यूनिंग, अगर वो शांति का सागर है तो उसके साथ ट्यूनिंग करने के लिए मेरे को भी तो शांत स्वरूप बनना पड़ेगा। इसीलिए क्या, उस सोच को, उस मतलब जो मेरा गुण है उसको सोच में लाना पड़ेगा। और इसीलिए कहा, राजयोग का अभ्यास करना है तो क्यों पहले स्वयं को समझो, क्यों पहले पिता को समझो और फिर कनेक्ट हो जाओ। तो जब ऐसे करेंगे तो वहां से वो सत्व, वो सत्यता, क्योंकि वो सागर है, जो मेरे गुण है वो उसी का क्या है, सागर है। उसके साथ ट्यूनिंग होते ही वो मेरा जो संस्कार है अब मेरी सोच में आने लगेगा। अभी क्या है, अंदर बैठ गया है, उसको अब क्या लाना है, सोच में। जैसे जो काम, जैसे आज आपने नाश्ता किया, ठीक है, क्या खाया नाश्ते में, नाश्ते में क्या खाया, हाँ जी बोलो। अच्छा, जो भी खाया, मतलब याद है आपको, एक हफ्ते पहले क्या खाया था नाश्ते में, खाया तो था ना, उस दिन तो याद था ना, फिर अभी क्यों भूल गया, उसके ऊपर दूसरी रिकॉर्डिंग आ गई, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिकॉर्ड होते जा रहा है ना। तो उस दिन तो याद था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे, दूसरी दूसरी रिकॉर्डिंग होते जा रही, तो वो भूल जाता है। और बहुत मेहनत से जब याद करते हैं तो याद आ भी जाता है। अब वो परमात्मा कहता है, अंदर में है, तुम ऑलरेडी खुशी के स्वरूप हो, तुम ऑलरेडी शांत स्वरूप हो, तुम ऑलरेडी शक्ति स्वरूप हो, बाहर से शक्ति लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको उजागर करने की जरूरत है। और उसको उजागर करने के लिए उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। और दूसरा ध्यान क्या रखो, कि अब जो मुझे पता चल गया है कि ये मेरे संस्कार हैं, मैं हूं ही शांत स्वरूप, तो सशक्तिकरण तो मेरा ऑलरेडी हुआ पड़ा है, लेकिन अब क्या ध्यान रखना है, अब इसमें कचरा मिक्स नहीं हो, है ना, अब इसकी शक्तियों का ह्रास नहीं हो, ये शक्तियां नष्ट नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। तब कहा, जब हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्वयं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो तो परमात्मा ने हमको बता दिया, बच्चे वो तो तुम्हारे अंदर है, अब उसको यूज करो, और जो नहीं चाहिए था वो भी है, उससे सिर्फ क्या करो, परहेज करो। क्यों, दोनों है मेरे अंदर। इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं, अजर अमर अविनाशी। शरीर क्या है, विनाशी। आत्मा ने शरीर धारण किया, और शरीर धारण करके जो जो प्राप्तियां करती गई वो सब एक दिन क्या है, छूटने वाली है ना, मतलब विनाश को प्राप्त करने वाली है। लेकिन ये आत्मा फिर अगले गर्भ में जा रही, माना आत्मा का तो विनाश नहीं हुआ ना, अभी आत्मा का तो विनाश ही नहीं हुआ, हमने देखा पूर्व जन्म के संस्कार भी है उसमें। और इसीलिए इंग्लिश में बहुत अच्छा कहते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। अर्थात ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है, न तो उसको खत्म किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा क्या करती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ये रूपांतरण उसका चलता रहता है। और वो रूपांतरण जब एक्सट्रीम ओरिजिनल से टोटल डिफरेंट हो जाता है, तब ऊर्जा वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में रूपांतरित हो जाती है। तो ये आत्मा भी तो एक शक्ति है, ये भी तो अविनाशी है। इसी के लिए ही तो गीता में आता है, न आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है, न हवा इसको उड़ा सकती है या सुखा सकती है, न जल इसको डुबो सकता है। मतलब ये पांच तत्व जो इस पांच तत्व वाले शरीर को डैमेज कर सकते हैं, वो इस आत्मा को नहीं कर सकते हैं। वो अविनाशी है, अजर है, अमर है। अजर माना ये शरीर तो पहले छोटा था, हमने कहा बच्चा है, फिर बड़ा हुआ हमने कहा युवा है, फिर बड़ा हुआ हमने कहा प्रौढ़ है, फिर बड़ा हुआ कहा हमने कहा बूढ़ा है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन आत्मा अजर, इसको बुढ़ापा कभी नहीं आता। ये तो क्या है, मात्र एक ज्योति है, एक शक्ति, अमर है। अर्थात इसके अंदर जो ओरिजिनल संस्कार है वो दब सकते हैं, हम उसको भूल सकते हैं, पर वो खत्म हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। वो हमारे में अंदर अभी भी है। बस अब मुझे ये ध्यान रखना है, जिसका मुझे अभी समझ मिल गई कि मेरे पास ये है, अब मैं सिर्फ इसको ही यूज करती रहूं ताकि मेरी शक्ति का ह्रास ना हो। क्योंकि अगर मैं इसको यूज नहीं करती हूं तो इसके बदले कुछ तो यूज करना है मैंने। जैसे बच्चा है छोटा, उसको कुछ तो चाहिए खेलने के लिए, उसको और कोई अच्छी चीज नहीं मिली। मम्मी किचन में काम कर रही है, चाकू दिख गया उससे ही खेलना शुरू कर दिया उसने। उसको थोड़ी पता है ये नुकसान करता है, वो तो माँ को पता है कि ये नुकसान करेगा। और इसलिए माँ क्या करती है, अगर ऐसे उससे लेने की कोशिश करेगी तो माँ को भी पता है बच्चा ऐसे नहीं देता है, तो क्या करती है, पहले दूसरी वाली चीज उसको दिखा देती है और फिर वो उससे नुकसान वाली चीज ले लेती है। तो मन को सोचने के लिए चाहिए चाहिए, अगर हम अच्छा वाला नहीं देंगे तो कैसा वाला भी सोचेगा जरूर। इसलिए मुझे अटेंशन रखना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैंने शांत स्वरूप होकर ही अपने कारोबार निपटाने हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे प्रेम स्वरूप होकर ही अपने व्यवहार में, रिश्ते नातों में पेश होना है। कब, जब सामने वाला भी प्रेम स्वरूप हो तब। हाँ भाई, मैं अगर प्रेम स्वरूप हूँ, सामने वाले भी आत्मा ही है ना, वो भी प्रेम स्वरूप है, परंतु वो तो मेरे सामने प्रेम स्वरूप नहीं पेश आ रही, तब फिर मुझे क्या करना चाहिए, तब तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। भाई वो प्रेम से बात करेंगे तो मैं भी करूंगा, ऐसे ही होता है ना। परंतु नहीं, सामने वाले को बीमारी है तो मैं भी बीमारी मोल लूं क्या, सामने वाले को बीमारी है तो मैं भी बीमारी को मोल लूं क्या, नहीं। तो सामने वाले को अगर आप कहेंगे, अगर सामने वाला अपनी बीमारी पे ध्यान नहीं देता है, मैं भी नहीं दूंगा, तो सामने वाला परेशान है, तुम भी परेशान रहो, ऐसे ही होगा ना। बीमारी होगी तो परेशानी होती है ना, किसको होती है, जो उसको पूछने आएंगे उसको होती है, जो बीमारी से गुजर रहा है उसको होती है। हाँ, बीमार होंगे लोग पूछने आएंगे, थोड़ी सांत्वना देंगे, लेकिन वो जो दर्द से वो जो भोगना हो रही है वो कौन भोग रहा है? कौन भोग रहा है? वो बीमार व्यक्ति भोग रहा है ना। तो सामने वाला अगर प्रेम स्वरूप नहीं हो रहा है तब भी मुझे प्रेम स्वरूप पर अटेंशन रखकर प्रेम स्वरूप से पेश आना है। हम सबको प्रेम से बात करना आता है? आता है? सभी को आता है, लेकिन क्या हर समय हम प्रेम से बात करते हैं? क्या हर एक से हम प्रेम से बात करते हैं? क्या हर परिस्थिति में हम प्रेम से बात करते हैं? कंडीशन कर देते हैं, सामने वाला करेगा तो मैं करूंगी, सामने वाला डांटेगा गुस्सा करेगा तो मैं भी क्या करूंगी? गुस्सा करूंगी। ठीक है, सामने वाले ने किया, लेकिन अगर मैं सोचूं कि उसने किया मैं भी कर लूं तो परेशान कौन होगा? जिस क्षण मैंने गुस्सा किया बेचैनी पहले किधर आई? मेरे पास या उसके पास? किसके पास आई? अशांत पहले कौन हुआ? मैं खुद हुई ना। तो नुकसान सामने वाले का हो रहा है या मेरा हो रहा है? हाँ, मेरा हो रहा है। तो ये कैसी बात, मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ? ये कौन सी समझदारी है? हम बुद्धिमान कहते हैं ना अपने आप को, मनुष्य माना बुद्धिमता। तो हमें अपने फायदे के लिए, दूसरे के लिए ना, अपने फायदे के लिए मुझे प्रेम स्वरूप होकर चलना है। क्योंकि जब मैं प्रेम का, प्यार का संकल्प करती हूँ तो मैं खुद अपने आप में अच्छी फीलिंग आती है मुझे, ठीक है ना। और अगर अंदर में, मन में अच्छी फीलिंग है, मन का असर किस पे आता है? शरीर पर आता है। शरीर भी कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। और जैसे सुबह बताया, मन में जो संकल्प किया, जैसे सरोवर में पत्थर फेंका तो चारों ओर सर्कल तैयार हुए, वृत्त तैयार हुए, ऐसे मन में भी जो संकल्प जैसा करते उसके अनुसार, क्योंकि एनर्जी है ना, ऊर्जा के लिए क्या कहते हैं, ऊर्जा गमन करती है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ से वो एनर्जी निकली, वो शक्ति निकली और क्या कर रही है? चारों तरफ फैल रही है। अब चारों तरफ में क्या है? लोग भी है, प्रकृति भी है, है ना, लोग भी है, प्रकृति भी है। मतलब मेरे मन की सोच मेरे मन पर असर डालती है, मेरे मन की सोच मेरे शरीर पर असर डालती है, मेरे मन की सोच चारों ओर के वातावरण में, चाहे वो प्रकृति के तत्व है चाहे दूसरी आत्माएं हैं, उन पर असर डालती है। अब मैंने यहाँ पर, सामने वाले ने मेरे को गुस्सा किया, मैं भी गुस्सा करूँगी, मेरे को भी उससे नफरत है, ठीक है, मैंने भी उसके लिए बहुत कुछ ऐसा वैसा सोच लिया, परेशान इधर हम हुए, उसका असर शरीर पर आया और ये एनर्जी जो बाहर गई सामने वाले को, उसको भी वो कौन सी एनर्जी मिली? वही वाली मिली। हाँ, तो अब वहाँ से, इसलिए हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं देखो मैं इनके साथ कितना प्यार से बात करती हूँ, लेकिन देख रहे हैं ना आप ये कैसे चलती है फिर भी मेरे साथ। तो हम प्यार से ऊपर से तो बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर से क्या कर रहे हैं हम? सोच के लेवल पर क्या है, उसके प्रति अच्छी भावना है? नहीं है। और इसलिए वो पहले उसके पास पहुंच जाता है, और इसलिए कई बार लोग कहते फलाने के पास जाते ही बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, और फलाने के पास जाते ही बड़ा डर लगता है। अभी उसने कुछ किया नहीं आपको, अभी उसने कुछ बोला नहीं आपको, परंतु अंदर की सोच, उस सोच के आधार से हमको वो फीलिंग्स आती है। इसलिए स्वसशक्तिकरण माना कि मैं अपनी शक्तियों का कहाँ कहाँ नष्ट हो रही है उस पर ध्यान रखूं, उस पर उससे अपने आप को बचा कर रखूं। कई बार देखो व्यक्ति व्यक्ति है सबके, क्योंकि सबके संस्कार अलग है ना, संस्कार ओरिजिनल संस्कार सबके एक से हैं, लेकिन बाकी वाले संस्कार तो सबके अलग अलग है। और इसलिए हर व्यक्ति का स्वभाव संस्कार हम बोलते हैं अपना अपना है। तो जब हर एक अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले मिलकर काम करेंगे, कहीं तो मतभेद हो ही जाता है, कहीं तो स्वभाव संस्कार का टकराव हो ही जाता है, और उस स्वभाव संस्कार के टकराव में सामने वाले के मन में भी जो था वो खूब सुना दिया हमको, हमारे मन में भी जो था खूब सुना दिया उसको। होता है नहीं होता ऐसे? करते हैं हम ऐसे? करते हैं ना? अच्छा, सुना तो दिया, उसने भी सुनाया, मैंने भी सुनाया, उसने सुनाया, मैंने सुनाया, ये करते गए, और उसके बाद एकदम चुप हो जाते हैं। कहाँ चुप होते हैं? और ये फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा चलने लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव चलता है ना। बाहर से तो हम चुप हो गए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा एक दूसरे के प्रति नेगेटिव चल रहा है, और बहुत ज्यादा जब नेगेटिव चल रहा है तो मेरी शक्ति का ह्रास हो रहा है या क्या हो रहा है? शक्ति नष्ट हो रही ना मेरी। इसलिए अगर मुझे अपने आप को सशक्त रखना है, मैं ये भी जानती हूँ कि स्वभाव संस्कार सबके अलग अलग हैं, कभी कभी टकराव हो भी जाता है, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, चलो आपने बोला मैंने बोला, आपने बोला मैंने बोला, तुरंत फिर क्या हो जाए, हम नॉर्मल, जैसे कि हमने एक दूसरे को कुछ बोला ही नहीं। वो बोलते हैं ना, चलो हम एक बार फिर से अजनबी बन जाए, बोलते हैं ना ऐसे, हम बिल्कुल कोरी स्लेट बन जाए, और फिर ऐसा वो प्रेम वाले और शांति वाले संस्कार से एक दूसरे के साथ पेश आए। क्योंकि जीवन की यात्रा को आगे तो बढ़ाना है ना, आसान करते जाना है ना, तो भले कभी कभी हो भी जाए, लेकिन हमें अटेंशन रखना है। फिर लंबे समय का जो हम मौन मुख का कर लेते हैं और इधर बहुत चलता है, वो नहीं होने दे, उससे बेहतर है इससे एक दूसरे के साथ वापस उतना ही नॉर्मल हो जाए जैसे कि हम में और आप में कुछ हुआ ही नहीं था। या फिर परमात्मा हमें कहते हैं संस्कारों की रास खेलो। रास खेलते ना डांडिया, तो डांडिया में मजा कब आता है देखने में, जब एक डंडी दूसरे डंडी से प्रॉपर वे में लगती है। अगर प्रॉपर वे में नहीं लगी तो वो कहाँ जाके लगती है, उसके हाथ या मुख पे लग जाएगी, तो वैसा वाला देखने में मजा आएगा? हाँ, तो रास करना माना ही सामने वाले का कहाँ पर डंडा है उसी पोजीशन पर लगाना। तो परमात्मा भी हमें कहते ठीक है, सामने वाले ने गुस्से में बोला, लेकिन गुस्से का उसके साथ रास मिला के चलना है ना मुझे, तो गुस्से से गुस्से की रास मिलेगी क्या? गुस्से से कैसे शांत करेंगे उसको? प्यार से शांत करेंगे ना। तो इसको परमात्मा कहते संस्कारों की रास मिलाते चलो, तो शक्तियां हरास नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, माना तुम सदा ही सशक्त रहोगे, और सशक्त मन से सदा ही जीवन आनंदमय हो जाएगा। और एक बात जो परमात्मा हमें सिखाते, बच्चे सदा ही दुआएं दो और दुआएं लो। क्या होता है दुआएं देना और दुआएं लेना? जब कोई बीमार हो, जब कोई मुश्किल में हो, लोग कहते आप इसको दुआ करो, आप इसको दुआ करो। हाँ, डॉक्टर भी कहता है मैंने तो जो कुछ करना था हर संभव प्रयास कर लिया, अब आप लोग इसको दुआ करो। तो मतलब क्या करो, क्या करो? दुआ करो मतलब क्या? उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प करो, यही होता है ना दुआ माना, उसके लिए श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प करो। इसीलिए तो कहते दुआओं का खजाना वो खजाना है जो समय पर काम आता है। वो उस समय नहीं तैयार हो जाएगा दुआ, वो तो जब पहले से जब किसी ने दुआओं का खजाना जमा किया हुआ होता है तब वो ऐसे मुश्किल की घड़ी पर काम आ जाता, जिसके लिए हम कहते हैं पता नहीं हम कितनी मुश्किल में थे पर पता नहीं किसकी दुआएं लग गई जो हम मुश्किल से ऐसे पार हो गए जैसे कि मक्खन से बाल निकल गया, ऐसे बोलते हैं ना। और सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से बातें बिगड़ती जा रही बिगड़ती जा रही, क्या कहते हैं पता नहीं किसकी बददुआ लग गई है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो ये नजर लगना बददुआ लगना माना कोई हमारे लिए क्या कर रहा है, निगेटिव सोच रहा है। लेकिन कोई हमारे लिए निगेटिव क्यों सोच रहा होगा, क्यों सोच रहा होगा? हमसे उसको कुछ दुख मिला होगा तभी ना। तो हम हमेशा अटेंशन रखे, चाहे सामने वाला कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे, लेकिन यहाँ अशुभ यहाँ पे सोच में कभी भी नहीं आए, फिर भी शुभ ही सोचूं। क्यों? शुभ सोचूंगी वो शुभ एनर्जी उसके पास जाएगी, वापस मेरे पास वही तो आएगी, जो देंगे वो वापस आएगा। ये संसार एक गुंबज है, नहीं गुंबज के अंदर जो आवाज करो किसके पास लौट के आती है, आपके पास ही लौट के आती ना। तो ये पूरा संसार भी एक गुंबज है, जो हम देंगे माना बाहर वापस वो हमारे पास आएगा। तो आज अगर मुझे दिखने में आता है कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन तब भी मुझे क्या करना है, अच्छा ही सोचना है। क्यों? जब मैं अच्छा सोचूंगी अच्छा रिटर्न आएगा, और ये अच्छा सोचती रहूंगी तभी उसके साथ ट्यूनिंग कर पाऊंगी। नहीं तो आज यही शिकायत है ना कि भगवान को याद करते हैं और भगवान में मन लगता नहीं, क्योंकि जो दुख है ना अंदर में वही वही थॉट चल रहे हैं ना, वही वही विचार चल रहा है ना। तो न इधर से कनेक्ट हो पा रही हूँ और न इधर से शुभ मिल रहा है। तो इसलिए एनर्जी हमारी, हमारी शक्ति जो आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, वो क्या होती जाती है, कमजोर। हालांकि मेरे अंदर शक्ति है, सुख है, परंतु चूंकि उसको सोच के लेवल पे नहीं ला रही हूँ, दूसरा जो संस्कार है उसको यूज कर रही हूँ। तो जिसको ज्यादा यूज करेंगे वो क्या होता जाएगा, बलवान होता जाएगा ना। तो बलवान की तो विजय होती है ना, हाँ कहते निर्बल की लड़ाई बलवान से, तो निर्बल जीतेगा बलवान जीतेगा, हाँ बलवान जीतेगा। तो इसलिए हमारे जो संस्कार है वो बलवान हो जरूरी है, उसको हर क्षण अपनी सोच में लेकर आऊं। जैसे कुछ पढ़ लिया हमने, कंप्यूटर सीख लिया, अंदर नॉलेज चला गया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती हूं अब वो सोच में आता है जल्दी, तो जब काम पड़ा तो अरे भाई तुमने कंप्यूटर सीखा ये करके दो, तो सब भूल गया। ऐसे ही होता है ना। तो प्रैक्टिस माना सोच में आता रहे वो। तो ये जो संस्कार मुझे पता चले हैं मेरे ओरिजिनल, ये अटेंशन रखना है, बार बार मेरी सोच के लेवल पर ये आता रहे। क्योंकि आज दादी भी आपको पूछ रही थी ना, ओम शांति का अर्थ समझा आपने, पूछ रही थी ना दादी। तो ओम शांति माना क्या? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शब्द किससे बना? अ, उ और म, इन तीन अक्षरों से। जहाँ अ माना आचरण, उ माना उच्चारण, म माना मन के विचार। कि जहाँ जिस प्रकार का मेरा मन का विचार है, उसी प्रकार का उच्चारण है, उसी प्रकार से आचरण में आऊंगी, तब जाके मैं शांति का अनुभव करूंगी। नहीं तो मन कुछ और, यहाँ से कुछ और, कर रहे कुछ और, हार्मनी नहीं, शांति कहाँ अनुभव होगी? हो सकती है? नहीं। तो हमें अपनी सोच क्या है? बीज है। ये हो नहीं सकता जो मेरे सोच में न हो वो यहाँ से निकल जाए। तो मेजॉरिटी क्या निकल रहा है यहाँ से? जो दूसरों के दिलों को दुख पहुंचा रहा है, ऐसा निकल रहा है। मतलब वो यहाँ कहीं होगा तब तो निकल जा रहा है ना। तो इसलिए अटेंशन सोच पर देना है। तो जब उस अटेंशन सोच पे रखेंगे, ये मेरे बोल भी अपने आप ठीक हो जाएंगे, कर्म के समय भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ लाइफ क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी। तब परमात्मा ने आकर कहा, बच्चे जीवन का जो फार्मूला है उसको अब बदल दो। आज दिन तक हम सोच रहे थे बाहर से अच्छा, अंदर से नहीं, तो रिजल्ट क्या आई? अब कहते इक्वेशन को बदल दो, अंदर से अच्छा, बाहर अपने आप अच्छा हो जाएगा। बाहर शांति खुशी को ढूंढ रहे थी अंदर, झांकना था अंदर, झांक रहे थे बाहर। अपनी कमी कमजोरियों पर नजर रखकर उसको सिर उठने नहीं देना था, लेकिन सबको देखती हूँ, इसमें ये कमजोरी है, इसमें ये कमजोरी है, इसमें ये, तो दूसरों की कमजोरियां देखते देखते मैं अपने आप को ही देखना भूल गई, और इसलिए मैं दिन ब दिन डिस्चार्ज होती जा रही हूँ। तो चार्जिंग उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिस्चार्जिंग पर ब्रेक लगाना वो बहुत जरूरी है। पानी की टंकी तो मैंने भर दी, पर लीकेज को नहीं रोका तो? तो हमें लीकेज कहाँ से हो रहा है? दिन भर के जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं, यहीं पर अटेंशन देना है, यहीं बहुत सारी हमारी लीकेज हो रही है। तो जब इस पर अटेंशन रखेंगे तो आत्मा तो ऑलरेडी शक्तिशाली है, तो हम सदा ही सशक्त रहेंगे और जीवन को खुशनुमा तरीके से जी पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर शाम का सेशन इसी हॉल में 5 बजे। तो कब पहुंचेंगे? 5 बजे से थोड़ा पहले। चलिए अब परमात्मा की याद के साथ इसको पूरा करते हैं।
दुख दर्द रोगों से मुक्ति दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है
खिलाता